The state of Tennessee is one of the few places where sounds are just as breathtaking as the sights. Whether that's live music at a historic venue, the crack of an open fire at a campsite in the wilderness, or hearing kids laughing as they explore what's right around the bend, Tennessee just sounds perfect. Start planning your trip at tnvacation.com. Tennessee sounds perfect.
This is Red Podcast, and you are listening to Indian Murder Mystery.
नमस्कार, मैं हूं सौरभ आपके साथ और आप सुन रहे हैं इंडियन मर्डर मिस्ट्री ऑन रेड पॉडकास्ट। देहरादून केस में अब तक आप सुन चुके हैं कि राजेश गुलाटी की पत्नी अनु 2 महीने से गायब थी। राजेश उसकी गैर मौजूदगी में बच्चों का ख्याल रख रहा था और उन्हें हर वीकेंड पर बाकायदा घुमाने फिराने बाहर भी ले जाता था, घर का सारा काम करता था। दिल्ली में राजेश की पत्नी अनु गुलाटी के परिवार वाले उससे बात ना हो पाने की वजह से परेशान थे और फिर अनु का भाई सनी देहरादून आकर राजेश को आड़े हाथों लेकर उससे पूरा मामला समझने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है कि अभी तक राजेश ने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की जबकि अनु 1.5 महीने से लापता है। पुलिस के पास जाते जाते एन मौके पर सनी को अनु के मोबाइल से मैसेज आता है कि उसे ढूंढने की कोशिश ना की जाए। अब आगे देखते हैं कि केस में क्या हुआ। राजेश अपने साले सनी को बार बार यही समझा रहा था कि अनु गुस्से में कहीं चली गई है और उसे विश्वास है कि वो जल्द ही वापस भी आ जाएगी, लेकिन पुलिस के पास जाने की बात करते ही अनु का मैसेज कैसे आ गया ये बात सनी के जहन से निकल ही नहीं रही थी। उसका कहीं ना कहीं माथा ठनका। राजेश ने कहा कि अगर पुलिस आएगी तो उसकी बहुत बदनामी होगी और शायद वो आस पड़ोस में किसी को मूंद खाने काबिल भी ना रहे। दोस्तों, शहर हो या छोटा शहर या गांव, कोई नहीं चाहता कि उसके घर पुलिस आए। ये बात सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में देखा गया है कि पुलिस से उलझना कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है या पुलिस के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, ये बात और है कि कुछ लोगों में पुलिस का डर नहीं होता। ऐसे लोगों की जेब या तो बहुत भारी होती है या फिर बिल्कुल खाली। लेकिन राजेश गुलाटी तो एकदम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से था, पढ़ाई लिखाई के दम पर अच्छी नौकरी पाई, विदेश भी गया और वहां से पढ़ाई करके लौटा तो भी एक आम जिंदगी ही जी रहा था। राजेश के बारे में सब जानते थे कि वो एक बड़ा ही खुश मिजाज और शरीफ किस्म का इंसान है। उसे काम का स्ट्रेस कभी नहीं होता था। अगर उसे स्ट्रेस होता था तो वो था उसके और उसके पत्नी अनु के बीच के झगड़ों का। अब इस तरह के इंसान का पुलिस के पास अपनी ही पत्नी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने जाने में हिचकना या हिचकिचाना तो बनता है। खैर, कुछ बातें कहने और सुनने के बाद राजेश और सनी पुलिस चौकी पहुंचे, इंस्पेक्टर को कंप्लेंट लिखवाई और अनु का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने भी शुरुआत में उन दोनों को यही सुझाव दिया कि उन्हें सभी रिश्तेदारों से पूछना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर ऐसे केसेस में कुछ टाइम बाद लोग लौट के खुद ही घर आ जाते हैं। लेकिन सनी ने फिर भी इन्वेस्टिगेशन पर जोर दिया, पुलिस वालों से इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की। ऐसा नहीं है कि स्मॉल टाउन्स में, छोटे शहरों में क्राइम नहीं होते, लेकिन क्राइम रेट शहरों के मुकाबले बहुत ही कम होता है। और ऐसा कहा जाता है कि पुलिस की नजरें इंसान को देखकर पहचान जाती हैं कि वो किसी तरह का संगीन काम कर सकता है या नहीं। और राजेश को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो ऐसा कोई अपराध भी कर सकता है। खैर, कंप्लेंट फाइल हुई और पुलिस की एक छोटी सी टीम सनी और राजेश के साथ उनके घर आ गई। घर से अनु की फोटोग्राफ्स कलेक्ट की गई और आस पड़ोस के लोगों से बात भी की गई। रिपोर्ट वगैरह फाइल करने के बाद पुलिस घर से निकल ही रही थी कि उनकी नजर किसी एक अजीब सी चीज पर आकर रुक गई। एक पुलिस वाले ने देखा कि घर में एक नहीं बल्कि 2 फ्रिज हैं। एक नॉर्मल रेफ्रिजरेटर जो सभी घरों में होता है और एक डीप फ्रीजर जो अक्सर दुकानों में रखा जाता है आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडा रखने के लिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के घर ये फ्रिज क्या कर रहा था? पुलिस वालों में आपस में बातें शुरू हो गईं। सभी की नजर उस डीप फ्रीज पर जमी हुई थी। राजेश की तरफ सभी नजरें उठ गईं। उससे पूछा गया तो उसने कहा कि ये फ्रिज अनु लाई थी और इसकी चाबी कहा है कि वो भी अनु को ही मालूम है। पुलिस वालों ने जांच पड़ताल की तो पता लगा कि वो फ्रिज बहुत ही नया है, लगभग उतना ही पुराना है जितना समय अनु को गायब हुए बीत चुका था। काफी देर तक पुलिस राजेश से सवाल करती रही। थक हार के राजेश ने पुलिस को उस डीप फ्रीज की चाबी दे दी। एक हवलदार ने डीप फ्रीज खोला तो देखा कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे काले रंग के पॉलिथीन के पैकेट्स पड़े हुए हैं। उनमें से एक पैकेट को निकालकर खोला गया। वो पैकेट बिल्कुल बर्फ की तरह था, एकदम पत्थर। डीप फ्रीज फुल कूलिंग पर काम कर रहा था। खैर, बर्फ हटाकर पैकेट खोला गया तो उसमें से एक मांस का टुकड़ा मिला। टुकड़ा छोटा था इसलिए समझ में नहीं आया कि वो किस जानवर का गोश्त है। ज्यादातर लोगों को लगा कि मीट का टुकड़ा होगा। खाना पकाने के बाद बच गया तो फ्रिज में रख दिया। एक और पैकेट खोला गया, इसमें भी मीट का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा, उसे भी रख दिया गया। फिर एक और पैकेट खोला और जब उस मीट के टुकड़े से बर्फ हटाई गई तो एक इंसान की उंगली नजर आई। ऐसा कहा जाता है कि मौके पर मौजूद पुलिस वाले के हाथ से वो उंगली छूट गई और सभी पुलिस वालों के होश उड़ गए। राजेश गुलाटी पसीने और घबराहट से भर चुका था। वो फूट फूट कर रोने लगा और उसने उस फ्रिज को गले लगा कर कहा कि अनु को मैंने मार दिया, ये मेरी अनु है, मुझे माफ कर देना अनु। जैसे ही ये शब्द राजेश के मुंह से निकले, पुलिस वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। डीप फ्रीज में करीब 60-70 टुकड़ों में पड़ी थी अनु गुलाटी की लाश, जिसे उसके ही पति ने मारा था। 2 महीने से अपने ही घर में थी अनु, अपने बच्चों और अपने पति के साथ। राजेश गुलाटी ने पुलिस को सारी सच्चाई बिना आनाकानी किए बता दी। बिना रुके वो सारे जवाब देता गया। अब कहानी को थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा। राजेश और अनु जब दिल्ली से देहरादून आए थे तो एक ऑफिशियल असाइनमेंट के लिए राजेश को कलकत्ता जाना पड़ा था। प्रोजेक्ट लंबा था और राजेश को वहां कुछ वक्त रुकना पड़ा। देहरादून में अनु दोनों बच्चों को संभाल रही थी और वहां राजेश का किसी और के साथ अफेयर हो गया। शादी के बाहर बना ये नाजायज संबंध राजेश के सर कुछ ऐसा चढ़ा कि उसने कोलकाता में दूसरी शादी कर ली। अनु को किसी तरह इस बात का पता चल गया और वो देहरादून से बच्चों को लेकर दिल्ली चली गई। राजेश ने दिल्ली पहुंचकर अपने किए पर पछतावा जताया और कोलकाता वाली पत्नी के साथ शादी तोड़ ली। पूरी फैमिली देहरादून आ गई और राजेश ने कोलकाता वाला चैप्टर अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया, या ये कहिए कि निकालने की कोशिश की, क्योंकि हर रोज अनु किसी ना किसी बात पर राजेश को यह याद दिला देती थी कि उसने क्या गलती की थी। कई साल से यह सिलसिला चला आ रहा था। किसी भी झगड़े में, किसी भी बात पर अनु ये याद दिलाने से नहीं चूकती थी कि राजेश से एक बहुत बड़ी गलती हुई थी और राजेश को माफ करके अनु ने उस पर कितना बड़ा एहसान किया है। 16 अक्टूबर 2010 उस रात को राजेश और अनु के बीच का झगड़ा कुछ ज्यादा ही गर्मा गया। राजेश ने पलट कर जवाब देना शुरू कर दिया तो अनु को गुस्सा आ गया। राजेश चिल्लाता हुआ अनु के पास आया तो अनु ने उसे धक्का दे दिया। राजेश का बैलेंस बिगड़ा और वो गिरते गिरते बचा। राजेश का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया था। राजेश ने पलट कर अनु को एक जोरदार धक्का मारा। अनु का सर बेड से टकराया, अनु के सर से खून निकला और वो होश खोने लगी। राजेश डर गया, उसे लगा कि शायद अनु मर गई। उसने सांसें चेक की तो अनु की सांसें अभी भी चल रही थी। उसने एक नजर अनु की तरफ देखा तो उसके दिमाग में एक बात आई कि अगर अनु ने इस चोट की वजह से उस पर पुलिस केस दर्ज किया तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। जेल जाने के डर ने राजेश के दिमाग पर गहरा असर किया। वो घबरा गया। राजेश ने कॉटन यानी रुई का एक गोला लेकर अनु के नाक और मुंह में भर दिया और फिर उस पर तकिया रखकर अनु का दम घोट दिया। एक कमरे की दूरी पर जो बच्चे सो रहे थे इस बात से बेखबर थे कि उनकी मां की सांसें उनके ही पिता ने घोट दी। जब राजेश को विश्वास हुआ कि अनु मर चुकी है तो उसने उसकी लाश बाथरूम में ले जाकर रख दी और बाथरूम में ताला लगा दिया। राजेश के लैपटॉप में एक फिल्म थी, हॉलीवुड की मशहूर फिल्म साइलेंस ऑफ द लैम्स। वहीं से उसे आइडिया आया कि अनु की लाश को ठिकाने कैसे लगाया जा सकता है। राजेश अगले दिन बाजार से एक डीप फ्रीजर लेकर आया। रात को बच्चों के सोने के बाद उसने डीप फ्रीज में लाश डाल दी और ताला लगा दिया। जब जब उसके बच्चे स्कूल जाते थे वो अनु की लाश को फ्रीजर से निकाल कर बाथरूम में ले जाता था और धीरे धीरे उसे अलग अलग औजारों से काटता था। पकड़े जाने के डर से राजेश ने 3 औजार 3 अलग अलग दुकानों से लिए थे। खून एक डरे हुए घबराए हुए इंसान ने किया था, लेकिन बॉडी डिस्पोज ऑफ करने का काम एक समझदार इंसान कर रहा था और वो भी बिल्कुल शांत दिमाग के साथ। उसने बयान में बताया कि वो ऐसे बॉडी पार्ट्स को चुनता था जहां कट लगने पर कम से कम खून बिखरे। एक बार जब बॉडी जमना शुरू हो गई तो उसे आगे दिक्कत नहीं हुई। बच्चों के साथ हर वीकेंड पर जब वो बाहर घूमने जाता तो लाश का एक छोटा सा टुकड़ा एक पॉलिथीन में रखता। रास्ते में कोई खाई या जंगल देखकर वो पैकेट को वहीं फेंक देता। जरा सोचिए, अपनी बीवी की आधी कटी हुई लाश के टुकड़े को इतने लंबे वक्त तक अपने ही घर में रखकर रोज उसके छोटे छोटे टुकड़े हर रोज सफाई से काटना और बच्चों से लगातार झूठ बोलते रहना, यहां तक कि सारी दुनिया से झूठ बोलना। वहीं उसी घर में रोज खाना बना, वहीं पे सोना, वहीं पे रहना। लाश के सामने होने पर लोग मुंह फेर लेते हैं, लेकिन राजेश बाकायदा उसी घर में सांस ले रहा था। राजेश गुलाटी ने अपने बयान में ये कहा कि उसे इस बात का बेहद अफसोस है कि उसने अपने दोनों बच्चों को यतीम कर दिया। यहां एक बात और नोटिस कीजिए, 2010 में राजेश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, पुलिस को सारी जानकारी दे दी। इसके बावजूद हमारे जस्टिस सिस्टम को 7 साल लगे हैं राजेश को उम्र कैद की सजा सुनाने में। 7 साल, आखिर ऐसा क्यों है? क्या यह सही है? क्या शायद इस बात की उम्मीद ही की जा सकती है कि जस्टिस सिस्टम में कभी कोई सुधार आएगा? न जाने लाखों लोग कब से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उम्मीद बांध के बैठे हुए हैं। मजबूरी हो या फिर कोई भी और वजह, क्राइम क्राइम ही है। कानून की नजरों में राजेश को फांसी की सजा देना वाजिब नहीं था, क्योंकि यह खून राजेश ने किसी प्लानिंग के साथ नहीं किया था। लेकिन इस केस से एक बात तो साफ हो गई है कि आपसी रिश्तों का ठीक रहना बेहद जरूरी है। आपसी रिश्ते अगर सही ना हो तो राजेश गुलाटी जैसे पढ़े लिखे और साधारण जीवन जीने वाले लोग खूनी बन जाते हैं। एक और बात, अगर कहीं भी आपसी रिश्तों में खटपट हो तो शांति से उसका जो भी निपटारा हो जाए वो निपटा के उस इंसान से जिससे आपके मतभेद हैं उससे अलग हो जाना बेहतर है, ना कि उसी इंसान के साथ रहते हुए उस रिश्ते का बोझ ढोते रहना। राजेश गुलाटी के बच्चों को उनके मामा और उनके नाना नानी पाल पोस रहे हैं और अब वो बच्चे दिल्ली में रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि बच्चे कभी सदमे से उभरने में कामयाब होंगे और अपने लिए एक अच्छा जीवन बना के सफल रहेंगे। इंडियन मर्डर मिस्ट्री में मैं हूं सौरभ, आपके साथ ओनली ऑन रेड पॉडकास्ट। अगली बार एक और क्राइम, एक और मर्डर मिस्ट्री आपके लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू।
यू आर लिसनिंग टू रेड पॉडकास्ट इंडियन मर्डर मिस्ट्री। Written by Dhruv Law. Audio designed by Aryan Pandey. Creative Director Saurabh Bhramar. Send your feedback and suggestions right to us at podcast@redfm.in.